जाग जा रे योगी मिटा दे आलस के घेरे अमृत वेले बाबा पुकारे देखो बाहें पसारे बाबा प्यार तुम्हारा अमृत वेले उठाता मोहिनी रात में मुझे जगाता प्रेम की घंटी हृदय मंदिर में बजती परमात्मा पुकार में आत्मा सुनती नींद पर होते योग के विजय माया के होते सहज पर अजय आराम नहीं मिलन चाहते बाबा संग आत्मा खिल जाते अपने कहा रात को अलविदा परवान हुआ क्षमा पे फिदा समय से पहले बाबा जगाते नयन खुलते ही मिलन कराते प्रेम में भीगा मन संकल्प मुस्काते माया के बंधन स्वयं कट जाते ठंडी गर्मी बारिश अब तप के साथी मौसम की मार अब ना डराती सोना अब आराम नहीं माया है नींद अब अमृत नहीं विष का साया है कमाई नहीं ये ऊर्जा की चोरी है सुस्ती के धुन में बजी माया की लुरी है तप की राह में मन की हेरा फेरी है जागृत में विश्व कल्याण का सूत्र हूँ ब्रह्म मुहूर्त का प्रहरी मैं शिव पुत्र हूँ सकल विश्व को तप से भरता अमृत वेला में तपस्वी जलता संकल्प से उठता नवयुग की नींव रखता तप के ईंटों से स्वर्णिम स्वराज्य रचता नींद की घड़ी अब बीत चुकी है माया की छाया अब मिट चुकी है वर्तमान में जलती है आत्मा की मशा मैं हूँ जागृत यही मेरा कमाल बाबा की याद में स्वयं को गढ़ता योग विनी से आलस को राख करता मैं अब सो नहीं रहा मैं हो रहा हूँ मैं अब खो नहीं रहा मैं जाग रहा हूँ जाग जा रे योगी मिटा दे आलस के घेरे अमृत वेले बाबा पुकारे देखो बाहें पसारे
समंदर से पूछा किसी ने तुम नीला रंग क्यों पहने हुए हो यह तो मातम का रंग है समंदर से पूछा किसी ने तुम नीला रंग क्यों पहने हो यह तो मातम का रंग है और तुम निरंतर उबलते क्यों रहते हैं वो कौन सी आग है जो तुम्हें उबालती है समंदर ने कहा मेरे महबूब से बिछड़कर मैं उदास हूं इसलिए नील पड़ गए और वह प्यार की आग है जिसमें मैं खोलता हूं। प्रेम आग की तरह है, जिसमें समंदर कह रहा है मैं उबलता रहता हूं। महबूब से दूर हूं इसलिए उदास हूं और इसलिए नीला पड़ गया हूं। स्नेह किसका किससे ज्यादा है, बाप का बच्चों से या बच्चों का बाप से? ये मुरली की पहली लाइन है। स्नेह अलौकिक पंख प्रदान करता है, डिवाइन विंग्स। स्नेह में रूहानी आकर्षण है, डिवाइन अट्रैक्शन। स्नेह चुंबक है, डिवाइन मैग्नेट, जो क्या करता है, खींचता है। स्नेह सर्च लाइट भी है, डिवाइन सर्च लाइट। स्नेह में कोई गणित नहीं, स्नेह में कोई सौदा नहीं, स्नेह में कोई तर्क नहीं होता। स्नेह में हृदय झुकता है, और इसी स्नेह की चर्चा बाबा कहते हैं। स्नेह में कोशिश नहीं है, स्नेह में मेहनत नहीं है, स्नेह में मजबूरी नहीं है, स्नेह में जबरदस्ती नहीं है, स्नेह सहजता है। और ब्रह्मा कुमार या ब्रह्मा कुमारी जीवन की शुरुआत ही स्नेह से है, और इसी स्नेह ने तुमको नया जन्म दिया है। परंतु अस्तित्व पर्याप्त नहीं, पोषण चाहिए, इसलिए पाप ने क्या किया है, तुम्हें सहज पालना दी है। और आत्मा को तीन चीजों की आवश्यकता है, शक्ति, समझ और आशीर्वाद। बाप द्वारा वर्षा अर्थात अधिकार अर्थात शक्ति, शिक्षक द्वारा समझ अर्थात ज्ञान, और सद्गुरु द्वारा वरदान आशीर्वाद। और ये पालना कैसी है, सहज, परंतु आदत किसकी पड़ी है हम सबको, कठिन की। सहज हमारा स्वभाव है, असहज समाज ने सिखाया है। और हमारी ये भी धारणा है कि जो चीजें सहज है वो शायद अच्छी नहीं है, जो चीजें सस्ती मिलती है या फ्री में मिलती है उनका क्या, वो शायद अच्छी नहीं है। सहजता, और उसके साथ एक शब्द और जोड़ा है बाबा ने, सजगता। जब सहजता होगी और सजगता होगी तो ही सिद्धि स्वरूप बनेंगे। केवल सहजता है और सजगता नहीं है तो क्या बनेंगे, लापरवाह, डोंट केयर। और यदि सजगता है पर सहजता नहीं है तो क्या होगा, तनाव, टेंशन। इसलिए आत्मा के मुक्ति के दो साधन है, एक सहजता और दूसरा सजगता। जब हम सजग नहीं होते तो क्या हो जाता है, मूर्छित, अपनी स्थिति से नीचे आ जाते, फिर छोटी परिस्थितियां, व्यक्ति, साथी, सब क्या अनुभव होते। पहाड़, तब वो महारथी नहीं रहता, क्या बन जाता है? मूर्छित। और परिस्थितियों के सामने मूर्छित होना ही यह दर्शाता है कि हमारा साम्राज्य रेत का था। तो बाबा ने क्या क्या देखा? डिवाइन बर्थ, डिवाइन लव, डिवाइन सर्च लाइट, डिवाइन होरोस्कोप, जन्मपत्री देखी, डिवाइन अट्रैक्शन, रूहानी आकर्षण, डिवाइन मैग्नेट, चुंबक, रहम, राहत, डिवाइन ब्लेसिंग, तो आज भी तीन सूत्र है। सबसे पहला स्मृति, दूसरा सहजता और तीसरा मर्यादा। पहला है स्मृति। कल भी हमने देखा था विधि पूर्वक कार्य हो, ब्राह्मण जीवन अर्थात विधि पूर्वक जीवन। सुबह से लेकर रात तक जो भी हम करते हैं वो क्या हो? विधि पूर्वक। चलना, उठना, बैठना, खाना, पीना। तो विधि के साथ क्या जोड़ना है? स्मृति को जोड़ना है। और जब विधि और स्मृति जुड़ जाएंगे तो क्या होगा? फिर सिद्धि, मेथडोलॉजिकल। स्मृति, मूर्छित नहीं, क्योंकि जिस समय यदि कोई महारथी कहलाता है और वो मूर्छित है तो उस समय वो महारथी नहीं है। फिर महारथ का मापदंड सजगता है, अवेयरनेस, अटेंशन, निरंतर अटेंशन, केयरफुल वॉकिंग, माइंडफुलनेस, वॉचफुलनेस। तो विधि और स्मृति, तो क्या होगी? सिद्धि। स्मृति, अगर स्मृति भूल जाती है तो सारे कर्म साधारण बन जाते हैं। दूसरा बाबा ने कहा वरदान। वरदानों में मेहनत नहीं है, वरदानों में पसीना नहीं बहाना होता है। वरदान कैसे होते हैं? सहज। बाप का हाथ मेरे सिर पर है, इसका सहज अनुभव। और हाथ अर्थात मत, श्रीमत। वरदाता का हाथ मेरे सिर पर है, सहजता। और तीसरा है मर्यादा। मर्यादा पूर्वक जीवन, ये तीन सूत्र हैं। सबसे पहला गृह कार्य, भोजन की जो प्लेट है इसमें ब्रह्मा भोजन का आया है। भोजन दुनिया वाले भी खाते हैं, तुम भी खाते हो, तुम्हारा ब्रह्मा भोजन। तो क्या करना है? भोग वो तो लगाते ही हो, तो एक कागज पर लिखना है दिस इज ब्रह्मा भोजन, या जो डायरी है उस पर लिखना, और खाते समय उसको बाजू में रखना है कि ये ब्रह्मा भोजन है। वहां क्या लिखा है भंडारे के ऊपर? मणि भाई क्या लिखा है? और मुरली की डेट कौन सी है? मुरली की डेट कौन सी है? 82 या 88? 16 फरवरी 1988। ये ब्रह्मा भोजन है, ये दुखभंजक भोजन है, इसमें दवा है तो दुआ भी है। अगर याद में रह के खाएंगे तो स्थिति नीचे ऊपर नहीं होगी। सब माता है किचन में भंडारे में सेवा करती है ना, वहां लगा है ना बोर्ड। ये क्या है? दुखभंजक। दवा है और दुआ है, दोनों है उसमें। तो क्या लिखना है? जो भी खा रहे उसको प्रेम भाव से स्वीकार करना है, कृतज्ञता के भाव से स्वीकार करना है। तो वहां पे एक चिट्ठी लिखेंगे कि दिस इज ब्रह्मा भोजन, ताकि वो याद रहे कि हम क्या खा रहे हैं। दूसरा, एक चित्र बनाना है जिसमें मेरे सिर पर एक हाथ है और नीचे लिखना है वरदाता, पाप का हाथ मेरे सिर पर है। ये दूसरा। और तीसरा, मेरे लिए मर्यादा की क्या परिभाषा है? मर्यादा अर्थात क्या? एक ही मुरली को यदि 10 व्यक्ति पढ़ते हैं तो 100 का विश्लेषण, 100 की उसके विषय में जो समीक्षा करेंगे वो अलग अलग होगी, एनालिसिस अलग अलग होगा। और हो सकता है 100 के 100 का अलग हो और जरा भी ना मिलता हो, फिर भी सभी 10 सही है। एक व्यक्ति जंगल में गया और उसने एक प्राणी को देखा। वो आकर अपने मित्रों से कहता है, मैं जंगल गया था, एक पेड़ के पास एक प्राणी है जो नीले रंग का है। उसका मित्र जाता है, अगले दिन देखता है उसी प्राणी को उसी पेड़ के पास, आकर कहता है, तुमने गलत देखा, वो नीले रंग का नहीं है, वो लाल रंग का है। तीसरा मित्र जाता है, वो कहता है, ना तो वो नीले रंग का है ना तो लाल रंग का है, वो तो पीले रंग का है। चौथा मित्र जाता है, वो कहता है, तुम सब गलत हो, मैंने उसको देखा है, उसका तो कोई रंग ही नहीं था। और वो झगड़ा करते हैं। और 3-4 मित्र आ जाते हैं, वो कहते हैं, कोई कहता है बैगनी कलर का, कोई कहता है और कुछ, वो सब कहते हैं, चलो हम खुद जाकर देखते हैं। वो वहां जाकर देखते हैं, उस झाड़ के पास एक व्यक्ति बैठा हुआ होता है और उस व्यक्ति से कहते हैं कि हमने इस झाड़ के पास एक प्राणी देखा है, कभी इन्होंने देखा तो लाल था, इन्होंने देखा तो पीला, हरा, नीला। वो व्यक्ति कहता है, मैं सदैव इस झाड़ के पास रहता हूं और मैं उस प्राणी को जानता हूं, वो कभी लाल है तो कभी हरा है तो कभी नीला है तो कभी पीला है, और कभी ऐसा भी समय है कि उसका कोई रंग नहीं। इसका मतलब तुम सभी सही हो, वो गिरगिट है, कमेलियन। तो प्रभु भी उस गिरगिट की तरह है जिसके असंख्य रंग है, जो कभी साकार है कभी निराकार है, कभी ना साकार ना निराकार, उससे भी परे, कभी गुणवान कभी गुणों का सागन तो कभी निर्गुण, सभी गुणों से परे। उसके अनेक रूप है, उसके अनेक रंग है। वो कभी पिता है तो अधिकार देता है, तो कभी शिक्षक है ज्ञान देता है, तो कभी सद्गुरु है आशीर्वाद देता है। और जीवन में ये तीनों ही रंग आवश्यक है, ये तीनों ही शक्ति आत्मा को पूर्ण करती है, शक्ति, समझ और वरदान। 89 की मुरली सुनी ना भी, फरवरी नवंबर की मुरली है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई यहां कोई मुरली नहीं है। क्यों? क्यों? पूरे साल में सीधा नवंबर में पहली मुरली चल रही है 89। बच्चे तैयार नहीं थे इसलिए खाली 15 मुरली है बस। क्यों? इससे पहले तक 15 मुरलियां कभी नहीं थी, कम से कम 21 तो थी, उससे पहले 28 थी, 87, 28, 89, 88, 21, अभी 89, 15। तो शरीर का भी हिसाब किताब है। तो उसके अनेक रूप है, और एक ही व्यक्ति एक ही दिन में उसके अनेक रूप अनुभव कर सकता है। कभी वो सागर, कभी वो सूर्य, कभी वो पिता, कोई संबंध, तो कभी कुछ भी नहीं, केवल प्रकंपन, केवल वाइब्रेशंस, प्योर वाइब्रेशंस। कभी वो व्यक्ति तो कभी केवल एक प्रेजेंस, एक उपस्थिति। कभी प्रेम तो कभी एक शक्ति साथ में चल रही है, एक अननोन स्पिरिचुअल पावर। बोल हम रहे हैं परंतु शक्ति उसकी काम कर रही है। तो उसके असंख्य रूप है। कोई ये नहीं कह सकता कि मैंने उसे पूरा जान लिया, वो अनंत है, अनंत का सागर है, रहस्यों का सागर है, बहुरूपी है। उसके कितने रूप है, असंख्य रूप है। किसको कैसा, किसको कैसा, किसको कैसा, वो तो कुछ ही बच्चे हैं जो उसको जानते। असंख्य तो संसार में वो है जो उसे जानते नहीं है, फिर भी उसकी आराधना करते हैं, उसकी पूजा करते हैं, उसके प्रति जीवन समर्पित कर देते हैं, सब कुछ उसके लिए करते हैं। मिस्टेकन आइडेंटिटी, परंतु उसे जानते नहीं, परंतु करते सब उसके लिए। परंतु उसे भी तो पता है ये सब मेरे लिए करते हैं। वो पूजा भले किसी कर रहे हो, पत्थर की कर रहे होंगे, परंतु उसे तो पता है ना, इसलिए वो जाके रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति अति न देख ही तैसी, उनको अपनी भक्ति का फल तो जरूर देता है। वो भी बंधा हुआ है, तो कोई जिस भाव से उसको पूजेगा, जिसकी आराधना करेगा, वो उसी भाव से उसके सामने प्रकट होगा, और ये उसका वायदा है। तो आज ये तीन कार्य है। पहला कार्य, भोजन करते समय सजगता, एकाग्रता, मौन, मोबाइल स्विच्ड ऑफ। और वहां क्या लिखेंगे, ये ब्रह्म भोजन है। याद दिलाना होगा, जैसे एक व्यक्ति ने सेकंड हैंड कार खरीदी, 2 हफ्ते में बहुत परेशान हो गया। सेकंड हैंड कार खरीदने के बाद बहुत बहुत परेशान हुआ, फिर से उसी कार डीलर के पास गया और कहा कि कार खरीदते समय तुमने जो कार की अच्छी अच्छी बातें बताई थी वो फिर बताओ, मैं भूल गया हूं जो जो सुनाया था और जिसकी वजह से मैंने कार खरीदी थी, वो सारी बातें मुझे दोबारा सुनाओ, क्योंकि मैं बहुत दुखी हो गया हूं कार की वजह से। तो अभी वापस गुस्सा में आने के लिए मुझे क्या चाहिए, वो बातें चाहिए। तो स्मृति में लाओ कि हम क्यों आए थे यहां। बाबा ने कहा स्नेह ने अलौकिक जन्म दिया, स्नेह ने रूहानी पंख दिए, अलौकिक पंख दिए है, स्नेह ने रूहानी आकर्षण किया है। यह स्नेह सर्च लाइट था, स्नेह की वजह से तुम यहां आए हो। तो अपने स्नेह को याद करो, वो सारी बातों को याद करो, नहीं तो ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी बनने के बाद में भी उदास और दुखी है। खुश नुमा भव, खुश नसीब भव, खुशी का खजाना से संपन्न भव, खुशी की खुराक खाने वाले तंदुरुस्त भव, 4 वरदान दिए हैं 7 नवंबर 1989, अभी अभी अव्यक्त मुरली रिवाइज हुई। तो मुरली को पढ़ो, इधर से पढ़ो, उधर से पढ़ो, आगे से पढ़ो, बाएं से पढ़ो, अलग अलग तरीके से पढ़ो, कुछ भी करके जागृत रहना है, मूर्छित नहीं होना है। मूर्छित अर्थात अपनी स्थिति से गिर जाना, मूर्छित अर्थात चींटी भी क्या अनुभव होना, पहाड़, मूर्छित अर्थात सहज और श्रेष्ठ अनुभव न होना, मूर्छित अर्थात सहज योगी नहीं। एक व्यक्ति स्वप्न देखता है और उसको देखता है कि लॉटरी लग गई, तीनों को एक ही जैसा स्वप्न आता है, लॉटरी लग गई। वो कहते हैं क्या करोगे, पहला कहता है मैं विदेश घूमूंगा, दूसरा कहता है मैं महल बनाऊंगा, तीसरा होता है भारतीय। वो कहता है जो 10 लाख रुपए मिले स्वप्न में मैं फिर से सो जाऊंगा, हो सकता है कि और 10 लाख मिल जाए। तो सोने की आदत और स्वप्न देखने की आदत बहुत गहरी है। मूर्छित होना जैसे स्वभाव बन गया है, सोए सोए रहते हैं। स्वयं को स्वयं जगाकर रखना, यही पुरुषार्थ है। सजगता ही पुरुषार्थ है। अटेंशन। तो क्या कहा बाबा ने, सबसे पहला विधि पूर्वक चलो। आप अमृत वेला विधि पूर्वक उठते हो तो देखो आपके यादगार चित्रों में भी विधि पूर्वक उठते हैं, कितना प्यार से उठते है जड़ चित्र, लेकिन कितने दिल से स्नेह से उठाते, उठाते भी है तो खिलाते भी है, सुलाते भी है। लेकिन आप इस समय सब कार्य याद में विधि पूर्वक करते हो, खाना भी विधि पूर्वक खाते हो, भोग लगा कर खाते हो ना, या जैसा है वैसे ही खा लेते हो, ऐसे तो नहीं किसी को खाना देना है इसलिए जल्दी जल्दी से भोग नहीं लगाया। अगर किसको देना भी है, कोई मजबूरी है, तो भी पहले अलग हिस्सा जरूर निकालो, ऐसे नहीं किसी को खिलाकर पीछे भोग लगाओ। विधि पूर्वक खाने से डैश प्राप्त होती है, खुशी होती है, निरंतर याद सहज रहती है, सिद्धि प्राप्त होती है। किसी एक अव्यक्त संदेश में बाबा ने कहा था, यदि भोजन याद में बनाया जाए और याद में खाया जाए तो 50% प्योरिटी वैसे ही मिल हो जाएगी। याद में बनाया जाए और याद में खाया जाए तो 50% प्योरिटी, बिना कुछ किए और कुछ नहीं करना पड़ेगा, ये अपने आप हो जाएगा। बहुत बड़ी बात है। प्योरिटी के लिए कितना क्या क्या करते हैं ब्रह्मचर्य के लिए। विधि पूर्वक खाने से सिद्धि प्राप्त। तो अमृत फले से लेकर रात तक जो भी कर्म करो याद से विधि पूर्वक करो तो हर कर्म की सिद्धि मिलेगी। सिद्धि अर्थात प्रत्यक्ष फल प्राप्त होगा। सबसे बड़े से बड़ी सिद्धि है प्रत्यक्ष फल के रूप में अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति होना। सदा सुख की लहरों में, खुशी की लहरों में लहराते रहो। पहले प्रत्यक्ष फल मिलता है, फिर भविष्य फल मिलता है। इस समय का प्रत्यक्ष फल अनेक भविष्य जन्मों के फल से श्रेष्ठ है। अगर अभी प्रत्यक्ष फल नहीं खाया तो सारे कल में कभी भी प्रत्यक्ष फल नहीं मिलेगा। अभी अभी किया, अभी अभी मिला, इसको कहते हैं डैश प्रत्यक्ष फल। सबसे बड़ा जो खजाना है वो है अतीन्द्रिय सुख, क्योंकि इंद्रिय सुख जो है, शरीर के जो सुख है, बहुत खींचते हैं। जिसने एक बार टेस्ट कर लिया उनको खींचते। रामकृष्ण परमहंस एक उदाहरण देते थे बैलों का, कैस्ट्रेटेड बुल्स। कैस्ट्रेटेड को इंग्लिश हिंदी में क्या कहते हैं देखो। तो एक वो है जो बचपन से वर्जिन, एक वो है जो कैस्ट्रेटेड है। जैसे ही गाय गुजरती है उनमें उत्तेजना उत्पन्न होती है, परंतु किस में, जिन्होंने भोग विलास का जीवन जिया था उनमें। पर बाद में उनको एक शब्द है कैस्ट्रेटेड के लिए, नपुंसक। बाद में वो और जो दूसरे होते हैं जिनको विकार का कोई अनुभव ही नहीं है, जैसे कुमार या कुमारिया, उनमें कोई उत्तेजना नहीं होती उन बैलों। पर जो भोग विलास भोग चुके हैं और बाद में उनको नपुंसक बनाया गया है, उनमें पैशन अराइज होता है, एक्साइटमेंट होती है, वो स्थिर नहीं बैठते। तो मनुष्य का स्वभाव या उसकी फितरत, वो सुख की ओर आकर्षित होता है। रूप रस स्पर्श शब्द गंध ये उसे पागल करके रखते हैं। रूप खींचता है, रस भोजन अच्छा अच्छा चाहिए। अगर एक दिन पूरा दिन बिना नमक के खाया, खाने को दिया जाए तो हो सकता है शाम को आंसू भी आ जाए। इसलिए आए थे कि हम बाबा के घर में, हम पालना पालना पालना, कौन सी पालना, खाने की पालना, रहने की पालना, कपड़ों की पालना, सम्मान की पालना, वस्तुओं की पालना, ये पालना है प्रभु की कि कोई और। उसकी पालना को कितना सीमित कर दिया है कि बहुत अच्छा खाने को मिला, बाबा कितनी अच्छी पालना कर रहा है, कितना अच्छा कमरा मिला, वाह वाह वाह, कितना अच्छा हॉल मिला। ये सब स्थूल है, ये आज है कल नहीं रहेगा। जिस हाथ ने दिया है वो हाथ छीनना भी जानता है। जिसने इतना सब सुख सुविधाएं दी वो छीन भी लेगा। जिसने इतनी प्रसिद्धि दी, इतना नाम दिया, इतना सम्मान दिया, वो सब छीन भी सकता है। इसलिए भूलना नहीं, राजी तेरी रजा में। तेरे पास बिजलिया है, मेरे पास आशियाना। कब तेरी बिजली आकर मेरे इस आशियाने पर, मेरे इस घर में, मेरे इस कमरे में, मेरे इस जगह पर गिर जाए और सब कुछ खत्म कर दे, मैं नहीं जानता। इसलिए राजी तेरी रजा में। तो ये सबसे पहला, विधि को किससे जोड़ना है? योग से, स्मृति से। तो क्या होगा? सिद्धि। और सबसे बड़ी सिद्धि है अतींद्रिय सुख, नहीं तो ये इंद्रिय खींचते रहता है, रूप रस स्पर्श शब्द और गंध, सुगंध, सुगंध खींचती है। कोई गीत खींचता है, कोई भोजन खींचता है, किसी के स्पर्श की याद आती रहती है। यदि किसी व्यक्ति के साथ संबंध रहा है पर वो संबंध केवल स्पर्शहीन शब्द संबंध रहा है तो उसको भूलना बहुत आसान है, परंतु उस संबंध में स्पर्श यदि जुड़ा था, फिजिकल कांटेक्ट था, उसको डिवोर्स हो जाए, पति मर जाए, पत्नी मर जाए, एक्स ब्रेकअप हो जाए, क्योंकि फिजिकैलिटी जहां इन्वॉल्व है उसको भूलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि संवेदनाएं सबकॉन्शियस में चली जाती है। संवेदनाएं सबकॉन्शियस, इसलिए शरीर पर जो संवेदनाएं हैं, बॉडी स्कैनिंग, ये रोज देखते रहना है। जरूरी नहीं है कि हर बार योग में मैं आत्मा हूं, परमात्मा की संतान हूं, सूक्ष्म वतन परम धाम, इसको सकाश उसको सकाश। कई बार इस तरह से योग करते हुए आत्मा थक जाती है और यह बोरिंग लगता है सब कुछ, यह सारा संसार ही बोर लगता है, आत्मा का परमात्मा का सब कुछ ऐसा लगता है क्या है, वही 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 वही। आत्मा समझना भी कितना बड़ा पुरुषार्थ है, जैसे एक बोझ लगता है, फिर से समझो आत्मा, लो है तो शरीर ही और समझना पड़ रहा है आत्मा। हे राम, कोई रस नहीं आता है, मैं आत्मा हूं आत्मा हूं आत्मा हूं आत्मा हूं बोलते रहते, होता कुछ नहीं, जबरदस्ती ड्रैगिंग, जस्ट मैं आत्मा हूं मैं आत्मा हूं, मैं रस कुछ भी नहीं आ रहा है, जरूरी नहीं है। इसलिए कभी इसको हटाओ और जस्ट बैठो और अपने विचारों को देखो, अपने श्वास को देखो, अपनी संवेदनाओं को देखो, या केवल बैठ जाओ मूर्छा मुद्रा बस ऐसे, और याद करो इस जीवन की बातों को, क्या क्या हुआ उनको, सुबह से लेकर रात तक दिनचर्या में क्या हुआ, केवल क्योंकि यह अभ्यास भी योग ही है, क्योंकि इसमें साक्षी का अभ्यास कर रहे हो, तटस्थ भाव से देख रहे, ये है। क्योंकि वही 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 ज्ञान की बातें, ज्ञान की क्लासेस, वही मुरली, ये सब पढ़ते पढ़ते क्या हो जाता है, एकदम उब, हाथ ही लगाने की इच्छा नहीं होती है। हाँ सुबह सुबह ठीक रहता है, 12 बजे तक, 9 बजे तक, सॉरी फिर यहां तक हम इंडिपेंडेंट है, फिर वहां से इसके उसके भरोसे होने लगते हैं, इसके भरोसे उसके भरोसे और खुद राम भरोसे, शाम तक। दूसरा, विधि पूर्वक चलो। यह वरदान की विशेषता है कि वरदानों को कभी मेहनत नहीं करनी पड़ती। जब भक्त आत्माएं भी मेहनत कर थक जाती है तो बाप से वरदान ही मांगते। आपके पास भी जब लोग आते योग लगाने की मेहनत नहीं करना चाहते तो क्या भाषा बोलते, कहते हैं सिर्फ हमें वरदान दे दो, माथे पर हाथ रख दो। आप ब्राह्मण बच्चों के ऊपर वरदाता बाप का हाथ सदा है, श्रेष्ठ मत का हाथ है। स्थूल हाथ तो 24 घंटे नहीं रखेंगे ना, यह बाप के श्रेष्ठ मत का वरदान रूपी हाथ सदा बच्चों के ऊपर है। अमृत वेले से लेकर रात को सोने तक हर श्वास के लिए, हर संकल्प के लिए, हर कर्म के लिए श्रेष्ठ मत का हाथ ही है। इसी वरदान को विधि पूर्वक चलाते चलो तो कभी भी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। मेहनत नहीं, संघर्ष नहीं, परंतु आदत कौन सी पड़ गई है, युद्ध करने की। कोशिश करते हैं, कोशिश करने की, युद्ध करने की, मेहनत करने की, पसीना बहाने की, असहजता की। जबकि बाबा कह रहे हैं सब सहज हो, अनुभव करो कि मेरे सिर पर एक हाथ है, एक अदृश्य शक्ति साथ साथ चल रही है। बस छोटा सा संकल्प, इसमें और कुछ नहीं जोड़ना। अगला, मर्यादा का पालन करो। अमृत वेले से लेकर रात तक की मर्यादा पूर्वक जीवन को अच्छी तरह से जानते, उसी प्रमाण चलना, यही पुरुषोत्तम बनना है। जब नाम ही पुरुषोत्तम, नाम क्या है? पुरुषोत्तम, अर्थात सर्वसाधारण पुरुषों से उत्तम। तो चेक करो कि श्रेष्ठ आत्माओं की पहली मुख्य बात स्मृति श्रेष्ठ है। स्मृति उत्तम है तो स्थिति, वृत्ति और दृष्टि, स्थिति स्वतः ही श्रेष्ठ है। स्मृति की मर्यादा को जानते हो, मैं भी श्रेष्ठ आत्मा और सर्व भी एक बाप की श्रेष्ठ आत्मा है। वैरायटी आत्मा है, वैरायटी पार्ट बजाने वाली। कितना अच्छा वाक्य, वैरायटी आत्मा है, वैरायटी पार्ट, सब अलग अलग है, सबके पार्ट अलग अलग है और सभी अपने अपने रीति से श्रेष्ठ है। हमको लगता है ये कितना मूर्ख है, हमको लगता है ये दुष्ट आत्मा है, पर उनको लगता है हम दुष्ट आत्मा है। हमको लगता है वो पापात्मा है, पर उनको लगता है हम पापात्मा है। यहां सब अलग अपने अपने रीति से सही है। हमको लगता है मैं जो पुरुषार्थ करता हूं ना वो राइट है, ये जो मैं उठता हूं 2 बजे ये सबसे बेस्ट है, और जो मैं खाता हूं ना यही संसार का सबकी सब आत्माओं ने खाना चाहिए, और जो मैं ये मुरली जिस तरह से पढ़ता हूँ या सुनाता हूँ या क्लास कराता हूँ या बोलता हूँ या कर्म करता हूँ या अपनी ड्यूटी करता हूँ, ऐसा ही सबको करना चाहिए। ये जो जूनियर से छोटे जो आए हैं ये क्यों नहीं करते? जितना मैं सिंसियर हूँ ये सिंसियर क्यों नहीं है? हर एक व्यक्ति सोचता है मैं ही राइट हूँ, और बाकी जितने पुरुषार्थी है सब अंधकार में है, सब भटक गए और मैं इनको ठीक करूँगा, और वो सोच रहे हैं कि वो हमको ठीक करेंगे। सब बिजी है एक दूसरे को ठीक करने में। देह को देखते भी आत्मा को देखो। यह समर्थ स्मृति हर सेकंड स्वरूप में आए, स्मृति स्वरूप हो जाए, सिर्फ सिमरन ना हो कि मैं आत्मा हूं। यह भी आत्मा है, मैं भी आत्मा हूं और यह भी है ही आत्मा। ये सब आत्मा है, सबके वैरायटी पार्ट है, इसमें अच्छा बुरे की बात ही नहीं है। बस साक्षी भाव, उपराम साक्षी, ये अलग गलत है, ये हमको किसने अधिकार दिया है ये डिसाइड करने का, ये राइट है ये रॉन्ग है, ये श्रीमत पर है ये श्रीमत पर नहीं है, ये अच्छा करता है वो अच्छा करता है, कौन अच्छा करता है और कौन अच्छा करता है हमें क्या पता? जज नॉट एनी शैल नॉट बी जज्ड, ये जजमेंट का हमको किसने अधिकार दिया है? हो सकता है वही राइट है, और जिसको हम अंधकार में समझते हैं वो हमेशा उजाले में था और हम ही अंधकार में थे। इसलिए देखते रहो अनडिस्टर्ब्ड, जिसको जो करना है, जिसको जो खाना है, जिसको जो करना है, जिसको जो 4 बजे उठते हैं उनको लगता है यही सही विधि, हम कम से कम 1 घंटा अच्छे से बैठते तो है और 2 बजे वाले दिखते हैं वहां पे बाबा के कमरे में, सब सो रहे हैं। उठते तो है 2 बजे, 5 मिनट जागते और 5 मिनट के बाद निद्रा चालू हो जाती है। इनसे तो अच्छे हम हैं, और फिर दिन में भी सोते रहते हैं क्योंकि सुबह 2 बजे उठे थे, उनसे तो हम अच्छे हैं। उनका अपना तर्क है, सबके अपने अपने तर्क है और सबके तर्क राइट है, हम कह ही नहीं सकते कि तुम गलत हो। इस पहली स्मृति की मर्यादा को सदा निर्विघ्न बनाती है, औरों को भी श्रेष्ठ स्मृति के समर्थन के वाइब्रेशन फैलाने के निमित्त बन जाते हैं, जिससे और भी निर्विघ्न बन जाते हैं। तो आज के ये 3 सूत्र हैं, सबसे पहले बताया स्मृति और उसके साथ क्या जोड़ो, विधि सिद्धि। दूसरा बताया वरदान का अनुभव करो, पर सहजता से अनुभव करो, सहजता ही योगी जीवन है। और तीसरा बताया मर्यादा। तो होमवर्क में मर्यादा की परिभाषा क्या है मेरे लिए, व्हाट इज मर्यादा फॉर मी, मैं क्या सोचता हूँ। आज की कविता, अच्छा वो कौन सी मुरली अभी तक नहीं दिखी मिली, पुरुषार्थ के मौसम वाली, एक ही मुरली है जिसमें बाबा ने कहा ये पुरुषार्थ का मौसम है। पुरुषार्थ शब्द तो 1000 बार मिल जाएगा सर्च करो तो, मौसम शब्द 2000 बार मिल जाएगा, पर पुरुषार्थ का मौसम है ये कोई तो मुरली एक है 2010 और 2020 के 17 के बीच की, जिसमें दोनों शब्द एक साथ है।
ओम शांति। आज की कविता का शीर्षक है पुरुषार्थ का मौसम। ऐसे तो चल ही रहा है, देख रहे हैं आप सब, पुरुषार्थ का मौसम। तो उसमें भी विशेष क्या क्या पुरुषार्थ किया जा सकता है और हम सब कर भी रहे हैं, तो उसके संबंध में कुछ एक पॉइंट्स हैं। और आप सभी को जो भी पॉइंट सुनाए उसके बाद में लास्ट में ये बोलना है, पुरुषार्थ का मौसम। असंभव को संभव, कौड़ी से हीरा, पतिस से पावन, मनुष्य देवता बन सकते हैं क्योंकि पुरुषार्थ का मौसम है। सकाश देने की सेवा, हजारों मील दूर बैठी आत्माओं को बाबा का संदेश दे सकते हैं क्योंकि का मौसम अब है। अनेक आत्माओं के लिए पद्मों की कमाई जमा कर सकते हैं। हाईएस्ट होलीएस्ट रिचेस्ट इन द वर्ल्ड बन सकते हैं क्योंकि मौसम अब है। बीज रूप बिंदु रूप फरिश्ता स्थिति लवलीन स्थिति का अनुभव कर सकते हैं क्योंकि का मौसम अब है। कांटों के जंगल को फूलों का बगीचा, रेगिस्तान में हरियाली की बहार ला सकते हैं क्योंकि मौसम अब है। विकारों पर विजय, संस्कारों का परिवर्तन कर माया जीत जगत जीत बन सकते हैं क्योंकि पुरुषार्थ का मौसम अब है। रहम दिल परोपकारी विश्व कल्याणकारी सर्व खजानों के दाता भाग्य विधाता वरदाता नष्टो मोहा बन सकते हैं क्योंकि मौसम अब है। अमृत वेला पावरफुल योग मुरलियों की स्टडी मनन चिंतन कर बाप समान बन सकते हैं क्योंकि मौसम अब है। ओम शांति।
मन्मना भव शिव बाबा सततम् निराकार तेजोमय पावनम् प्रभात काले स्मरणं दिव्यम् सत्यं शिवं सुंदरं चिंतनम् थामले तप की मशाले तोड़ दे नींद की जंजीरे थामले तप की मशाले पाड़ दे आलस की काली चादर निद्रा से तप काना कर अनादर सपनों का विष पीने से कर इनकार रूहानी योद्धा कर अब ललकार न सो न लेट हो जा तैयार उठ चल कर तम तेरे एक संकल्प से क्रांति गूंजेगी उठ तपस्वी तू उठे तो विश्व सवरेगा वेले की है पुकार ना रुक ना झुक हो जाने राधार बढ़ चल बन युगांतर का विशाल।